मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं मुझे विश्वास है कि आप उसे एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ कहीं न कहीं व्यावहारिक भी पा रहे होंगे। आज इस विषय का यह अंतिम एपिसोड है। कल मैंने आप सबसे कहा था, याद करने की कोशिश कीजिए, कि सत्य कई प्रकार के होते हैं, जिनमें दो सत्य की मैंने बात की थी। एक निजी सत्य पति और पत्नी के यहां उत्पन्न होने वाली संतान के रूप में, और यही सत्य सार्वभौमिकता के रूप में कैसे एक प्रकार से जीवन की कड़ी बन जाती है, यानी कि इस धरती पर जो जीवन है उसमें निरंतरता बनी रहे उसके लिए एक कड़ी आ गई है। इसके बीच में और बहुत सारे सत्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर समाज का सत्य है, ये जो बच्चा हुआ है ये समाज का सदस्य है। राष्ट्र का अपना सत्य है, राष्ट्र के लिए वह एक नागरिक है। और विश्व का अपना सत्य है, विश्व के लिए वह एक आंकड़ा है। और याद रखिए, ये जितने भी सत्य हैं ये सभी अपनी अपनी जगह पर सही ही हैं। अगर सही नहीं होते तो फिर बात ही करने की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। लेकिन गड़बड़ी कहां होती है? फिर गड़बड़ी दोस्तों वहां होती है जहां जिस सत्य का इस्तेमाल किया जाना चाहिए वहां उस सत्य का इस्तेमाल न करके हम दूसरे सत्य का इस्तेमाल करने लगते हैं। और वह कौन सा सत्य होता है जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? वह होता है हमारा अपना सत्य, अपना अनुभव और अपना स्वार्थ। जब वह हावी हो जाता है तो यही जो सत्य है वो दूसरी जगह पर लागू करने के कारण असत्य बन जाता है। गीता में एक बहुत खूबसूरत वाक्य है, बहुत ही छोटा सा वाक्य है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सत का अस्तित्व होता है, असत का तो अस्तित्व ही नहीं होता है। यानी कि इस जगत में जो कुछ भी है वह केवल सच ही है, जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन आप देखिए कि हमारे जीवन का जो संचालित करने वाला जो मूल तत्व है वो कहीं ना कहीं असत्य ही है, क्योंकि हम जीते किसके आधार पर हैं? हम अपनी धारणाओं के आधार पर जीते हैं, अपने विचारों के आधार पर जीते हैं, अपने छोटे से अनुभव जगत के आधार पर जीते हैं, अपने छोटे छोटे स्वार्थ के टुकड़ों के आधार पर जीते हैं। उसमें व्यापकता है ही नहीं। और इससे होता क्या है कि हमारा जो एक छोटा सा सत्य है वो बड़े से सत्य के साथ लगातार टकराता रहता है। और इस टकराव में याद रखिए कि जो हिस्सा टूटेगा वो हमारे निजी सत्य का होगा। सार्वभौमिक सत्य टूटने की तो बात छोड़िए, वो दर के घाबी नहीं, क्योंकि वो सार्वभौमिक है। और हमारे साथ जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि हम अपने आप को, चाहे अहम की वजह से कह लीजिए या स्वार्थ की वजह से कह लीजिए, अपने आप को ब्रह्मांड के केंद्र में रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम ही ब्रह्मांड हैं, हम ही सब कुछ है। वहां गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि जो अस्तित्व है वह सिर्फ सत्य का ही है, असत्य को तो कोई पूछता ही नहीं है। अगर मैंने अपने दिमाग में उसकी रचना कर ली है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक मैं उस असत्य को जी लूंगा, उस कल्पना की दुनिया में रह लूंगा। दूसरे के बारे में मैंने जो कुछ भी सही गलत सोच लिया है उस सोच के आधार पर उसके साथ व्यवहार कर लूंगा, लेकिन वह टिकेगा नहीं क्योंकि वह असत्य है। तो असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। हम समुद्र की बात कर रहे थे। अब आप देखिए कि समुद्र अच्छा है या बुरा है इसका कोई मतलब नहीं है। समुद्र समुद्र है, समुद्र कर क्या रहा है? पानी है, पानी उसके अंदर भरा हुआ है, उसकी लहरें उठती हैं, उसकी लहरें जब उठती हैं तो तटों की ओर आती हैं और इसके बाद तटों से फिर लौटती हुई अपने समुद्र के अंदर चली जाती हैं। ये उसका स्वभाव है, राइट? वो चप्पल बहा करके ले जाती है, लेकिन तटों से टकराते हुए जो चट्टाने हैं उन्हें तो बहा कर नहीं ले जा पाती ना। तो समुद्र का स्वभाव ही है तटों की ओर अपने लहरों को भेजना और इसके बाद अपनी भेजी गई लहरों को वापस बुला लेना। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इन लहरों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। यदि हमें वे लहरें खतरनाक लग रही हैं तो सीधी सी बात है कि हम बचकर रहें, और यदि लहरें खतरनाक नहीं लग रही हैं तो हम उस प्रकार से रहें। अगर वो बच्चा अपनी चप्पल थोड़ी दूर उतार देता तो लहरें उसके चप्पल को चुरा नहीं सकती थी। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और गीता में इसी सत्य को समझाने की कोशिश की गई है कि आप स्वभाव को समझिए, क्योंकि हर वस्तु का एक स्वभाव है, हर जीव का एक स्वभाव है और यह स्वभाव ही उसका सत्य है। और जब हम उसके स्वभाव के सत्य को जानकर उसके साथ उस तरह का व्यवहार करते हैं तो हमें कभी दुख नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं होगी, कभी नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, कहानी बड़ी छोटी सी थी, प्यारी सी भी थी, लेकिन जब अपन लोगों ने उस पर बात करनी शुरू की तो बात कितनी दूर तलक चली गई है। तब आप सब मुझे इजाजत दें, इस विषय पर अपने अपने ढंग से विचार करें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।